예수님께 드릴 드려요. 한마디 와요. हमने सिर्फ एक फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल करने में देरी किया थी और अब वो हमारी गले लगा हुआ है। अब वो पॉल्यूशन की सूरत में, ओजोन लेयर की सूरत में, इसकी उसकी सूरत में हमारी मुसीबत पा गई। अब पूरे एनवायरनमेंट को हम तबाह होकर देख रहे हैं। हमने क्या किया है, बिलियंस ऑफ ईयर्स के अंदर खुदा ने बताया है, प्रेशर के जरिए से, एक एनवायरनमेंट के जरिए से फॉसिल फ्यूल्स बनाए थे, उसको हमने सवा सौ साल के अंदर इतना इस्तेमाल कर लिया है जो मिलियंस ऑफ ईयर्स में बने थे। उसके नतीजे में यह है कि अब कई सौ साल तक इस गंध को साफ भी करेंगे तो ये साफ नहीं होगा, मैं तो पूछ सकता हूँ। खुदावंद ने बिजाजे किए कि चूंटी को इतनी अकल नहीं दी है कि वो अपनी हिकमत के बारे में सवाल करे, अपनी हिकमत को ढूंढने की कोशिश करे, तो क्या मेरे पास भी अकल नहीं है? मेरे पास तो इतनी अकल है। ये हमारी जिम्मेदारियों में से अहम तरीन जिम्मेदारी बन जाती है। आप अपने वजूद की उस हिकमत को ढूंढ लें जिसकी खातिर खुदा ने आपको खल्क किया। अच्छा, अब यहाँ पर बहुत सारे टाइटल्स आ सकते हैं। मसलन आप इंसान हैं, सारे इंसानों की एक हिम्मत है, आपकी वो हिम्मत होगी। आप इस कायनात का एक हिस्सा हैं, इस पूरी कायनात की हिम्मत है, आपकी भी हिम्मत होगी। लेकिन मैं इससे बढ़कर एक बात कर रहा हूँ, मैं इंडिविजुअल हूँ जो एक खास तारीख को एक खास टाइम के ऊपर दुनिया में आया हूँ, मेरी कोई हिम्मत है या नहीं है? कैसा हो सकता है मेरी कोई हिम्मत ना खुदा ने खुद खुद किया? इसका मतलब है इस पूरे कायनात में मेरा भी कोई रोल है। आपको इस रोल को डिस्कवर करना होगा, आपका रोल क्या है। अच्छा, हमको ये भी पता है कि हर इंसान को उसकी कैपेसिटी के हिसाब से जवाब देना होगा। यानी मिसाल के तौर पर फर्ज करना कि आपका आईक्यू लेवल बहुत हाई हो, आपसे कयामत के दिन वो सवाल नहीं होगा जो दो आईक्यू वाले से किए जाए। तो मैं ये नहीं कर सकता कि मुझे खुदा ने बहुत सारी सलाहियतें दी थी और मैं बिल्कुल थर्ड क्लास का एक काम करके खुदा से कहूं कि भाई मैंने थर्ड क्लास काम किया ना, तुम थर्ड क्लास वाले को जन्नत में डाल दो, मुझे भी डाल। तो वो ये कहेगा कि मैंने उसको तीसरे दर्जे की सलाहियत दी थी, तुम्हें तो आधा दर्जे की सलाहियत दी थी, तुम कहां से कह रहे हो कि मैं तुम्हें इस नंबर पर पास करूं? ये दुनिया का इम्तिहान नहीं है कि सारे थर्ड डिग्री पे पास होंगे, दुनिया नहीं है ये, अल्लाह का आदलाना निजाम है। एक बच्चा लो आई क्यू का है उससे मैं एक्सट्रैक्ट करूं उसका ए भी 17 प्लस हो, और एक हाई आई क्यू का है उसका भी 17 प्लस पर ये हो जाए, तो जुर्म है। अल्लाह ये जुर्म नहीं करेगा। अल्लाह कैसे करेगा? उनका तो आदि पहले से। तो आप जो हमसे खास सवाल करेगा, क्या सवाल करेगा? कहते तो भाई तुमको तो मैंने ये दिया था, दूसरे को तो वो नहीं दिया था। अब इस पर वही लतीफा भी कहते हैं, लोग कहते हैं पाकिस्तानी को तो अल्लाह वैसे ही जन्नत में डालेगा, बेचारा कुछ मिला ही नहीं दुनिया में, दुनिया में परेशानी की परेशानी मिली है, इनसिक्योरिटी मिली है, गर्मी मिली है, लोड शेडिंग मिली है, सब सारी मुसीबतें मिल रही हैं। अच्छा, जिसको सब मुसीबतें नहीं मिली उनसे ज्यादा हिसाब नहीं दे रहा? मतलब मुझे बिल्कुल साफ लगता है आपसे एक सवाल करेगा, वहां पर एक्स्ट्रा टाइम था, तुमने उसका क्या किया? भाई आपके सामने एक आदमी है जो 10 घंटे 12 घंटे काम करता है और पेट भरने के बराबर उसे नहीं मिलता है। उसकी बीवी 3 घंटे मिसाल के तौर पर पानी भरने जाती है, उसके बच्चे खेत में काम करते हैं और 3 बार पेट भरने के बराबर नहीं मिलता, उससे भी खुदा वही हिसाब लेगा जो आपसे लेगा? क्या आपसे एक्स्ट्रा हिसाब नहीं लेगा? भाई ना तुम्हारे पास 12 घंटे काम की मुसीबत थी, ना तुम्हारे पास किसी जमींदार की जुल्म का खौफ था, ना तुम्हारे पास पीने के पानी की मुसीबत थी कि 3 घंटे पानी नहीं भरूंगा तो पानी कहां से पीऊंगा। तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम बहुत था, तुमने इसमें क्या किया? जवाब होना चाहिए, बताना होना चाहिए। आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने आप को बहलाइए ना नहीं। हम इंसान सर बहुत सारे मुसीबतें हैं, बहुत सारी मुश्किल हैं। एक मुश्किल की तरफ इशारा करता हूँ, शबे जुम्मा हम जिसके साथ कुछ जुमला अर्ज करने दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले समझ में आ रहा होगा मैं आपसे कह दूंगा। मैंने आपसे कहा आपको पर्ची भी मुझे देंगे ना मैं पढ़ दूंगा, क्योंकि मैं छुपाने का आदमी नहीं, ठीक है। मैं साफ साफ आपसे एक बात कह रहा हूँ, इससे पहले एक फिलोसफी के ऊपर बात कर लेते हैं, एक रीजनिंग, कंप्लीट रीजनिंग। वो क्या है? ऐसा आप बुलाते क्यों? आप किसी बोलने वाले को बुलाते क्यों? आप खुद ही काम क्यों नहीं करते? इसकी एक सादा सी वजह, आप ये समझ रहे होते हैं आपके ध्यान में क्यों होना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि भाई हमें दीन अच्छा लगता है, हमें दीन अजीज है, अजीज है कि हम दीन चाहते हैं, और हमें खतरा ये है कि हम दीन के एक्सपर्ट्स नहीं है। आप इंजीनियर हो सकते हैं, आप अकाउंटेंट हो सकते हैं, आप मिसाल तौर पर दीन के एक्सपर्ट नहीं होंगे, जाने पहचाने लोग होंगे, आपने दीन पे अपना इश्क लगाया, अपना जज्बा लगाया, लेकिन आप दीन के एक्सपर्ट नहीं होंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि हमें दीन अजीज है, हम दीन चाहते हैं, हम अपने दीन को छोड़ना नहीं चाहते, और हम दीन के एक्सपर्ट्स नहीं है। हम क्या करेंगे? हम कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे और उनसे कहेंगे हमें दीन सिखाओ, ठीक है? विजन यही हुआ, सही। अच्छा, इस एक्सपर्ट की जिम्मेदारी क्या है? जहां आपके दीन को देखे कि खतरे में पड़ रहा है आपको बता दें, अगर उसने ये काम कर दिया उसने इंसाफ किया, और उसने काम नहीं किया तो उसने जरूर किया, ठीक है। मसलन आप गए डॉक्टर के पास, आपने डॉक्टर को फीस दी और आपने डॉक्टर से कहा कि भाई ऐसा है मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं सिर्फ चेकअप कराने आया हूँ कि कहीं इम्कान तो नहीं है मैं बीमार हो रहा हूँ। बहुत सारी बीमारियां होती है, पता ही नहीं होता, अंदर ही अंदर बनती रहती है, एक मौके में जाकर बस्ट हो जाती है तो फिर देखते हैं बहुत लेट हो गया है। तो मैं चाहता हूँ पहले ही से मुझे पता चल जाए बीमार नहीं हूँ, सिर्फ चेकअप कराने आया हूँ। अच्छा, उस एक्सपर्ट की क्या जिम्मेदारी होगी? क्या आपकी बीमारी को देखे और छुपा दे? जुर्म किया है काम, उसकी बीमारी, उसका इंसाफ क्या होगा? उसका इंसाफ ये होगा कि आपका अच्छी तरह मुआयना करें, आपके जिस्म को बहुत अच्छी तरीके से देखें, जितना भी टटोल सकता है टटोल ले, उसके बाद आपको साफ साफ बताए देखो भाई तुम्हारी बॉडी में ये फंक्शन बिल्कुल सही है, इन जगहों के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गई है, सही है। अब तुम अगर चाहते हो तो मजीद स्क्रूटनी कर लेते हैं, मजीद टेस्ट कर लेते हैं ताकि पता चल जाए कि प्रॉब्लम है क्या, और अगर नहीं चाहते अल्लाह मालिक, तुम मालिक हो अपने जिस्म, करना करो, नहीं करना है नहीं करो। अलबत्ता एक जगह पर आकर वो एक्सपर्ट आपकी भी नहीं सुनेगा, वो क्या, खुदा ना करे अगर आपको कोई ऐसी डिजीज लग गई जो दूसरों को लग सकती है, आपको आपके एक लफ्ज नहीं सुनेगा। अब आप कहेंगे मैं इसको स्क्रूटनी नहीं करना चाहता, तो तुम होते कौन हो स्क्रूटनी नहीं करना चाहते? तुम सोसाइटी के लिए रिस्क हो, सोसाइटी के लिए रिस्क हो। वो भेजेगा आपको करंट टाइम के अंदर, उसके बाद के तुम नहीं बैठोगे जब तक ये सारे टेस्ट क्लियर नहीं हो। एयरपोर्ट पे इतने बने हैं आपको पता ही, और वो हमारे दोस्त कह रहे थे अगर आप कभी अफ्रीका से वापस आ रहे हो और रेस्ट का मोड हो तो वहां पर जाके कह दीजिएगा मैं अफ्रीका से आया हूँ, मैंने टीका नहीं लगवाया। तो 10 दिन तो वैसे आपको बैठा देंगे, गवर्नमेंट के खाते पे 10 दिन आप आराम से बैठ लीजिएगा, दिन भर का 100 रुपया होता है ना, तो एक जगह होती है जहाँ पे एक्सपर्ट आपकी नहीं सुनता, उससे कहता है भाई तुम तो सोसाइटी के लिए रिस्क बन गए हो, मैं ये खतरा मोल नहीं ले सकता। अच्छा, एक और जगह भी होती है जहाँ सोसाइटी के लिए रिस्क नहीं होता, नेक्स्ट जनरेशन के लिए रिस्क होता है, वहां भी रोक लेता है। अच्छा, आप लाख उसको कहना नेक्स्ट जनरेशन मेरी है, ये नहीं सुनता वो, जनरेशन तुम्हारी नहीं, नेक्स्ट जनरेशन सोसाइटी। अगर इन तमाम जगहों के ऊपर एक्सपर्ट दो नंबर काम करे, फिर छुपा लेकर आपके अटेंशन चीज इसको पहले से बता देना चाहिए। अब मैं अभी जल्द बर्दाश्त कर रहा हूँ, आपने हमें क्यों बुलाया है, आप समझ रहे हैं हम दीन के एक्सपर्ट हैं, और आपने जो हमें टास्क दिया है मुझे, हम आपकी दीन को संभालें। आपने लोग गुजारने के लिए तो नहीं बुलाया कि भाई 20 दिन गुजारने, किसी भी तरीके से गुजार लो, किसी को बैठा नहीं था, चलो इनको बैठा दिया, इतना नहीं चला ना। आपने चाहा है कि हम आपके दीन के बारे में ये देखें कि भाई सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसमें कहीं कोई खराबी तो नहीं आने वाली है। हमारा काम ये क्या है, हमारा काम ये है कि आपके गले में अगर कोई कड़वा घूंट भी डालना पड़े तो डाल दीजिए, डाल दीजिए। अच्छा, कौन सा एक्सपर्ट दो नंबर काम करता है? वो डॉक्टर जो कहता है कि अगली दफा नहीं आया तो मेरी फीस कहां से आएगी, वो दो नंबर काम करता है, कहता है इसको लेके आना है दोबारा क्लिनिक में लाना है, सही। अगर जिसको इसकी परवाह ना हो वो ये काम नहीं करेगा। नी लेंथ नहीं कहेगा तुम्हारी बॉडी 100% सही है, तुम्हें मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं। कराची में एक साहब हैं, बहुत जबरदस्त अपने काम के एक्सपर्ट हैं, और मुझे उनकी स्पेसिफिक फील्ड का नाम याद नहीं आ रहा अभी, उसको डील करते हैं। तो एक साहब है, उनको शक हुआ कि उनको एक बीमारी है जिसका उनकी फील्ड से ताल्लुक, उन्होंने कहीं से मुश्किल से वक्त ले लेके उनके पास पहुँच गए, बहुत हैवी फीस है उनकी, पहुँचे उनके पास आए और कहा कि मुझे शायद ये बीमारी है, कहा शायद, कहने हाँ मुझे खतरा है, कहने तुमने मेरा वक्त आए क्यों, मेरे पास आए क्यों, तुम्हें पहले सर्टेन लेवल के ऊपर टेस्ट करवा लेने चाहिए थे, इस हद पर अगर कन्फर्म होता तब तुम्हें मेरे पास आना चाहिए। ये डॉक्टर ट्रू डॉक्टर, क्यों ये बिल्कुल नहीं सोचा कि मुझे फीस मिल रही है नहीं मिल रही, वो सिर्फ एक बात सोच रहा है, इस बंदे ने मेरे पास आकर पीछे जो वाकई मरीज बैठे हैं उनका वक्त जाया करवा दिया, कि क्यों आया मेरे पास, फिर उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ी, कहेंगे भाई अल्लाह का वास्ता अभी आप देख लो शायद है मेरे अंदर ये अलहदा मसला के खाया नहीं। आप हमेशा देखते रहिएगा आपकी जॉब क्या है, हमारी जॉब क्या है, यहाँ पर बैठे हुए शख्स की जॉब भी आपकी दिल चेक करें। अब मैं आपकी खिदमत में मसला आज चलना चाहता हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, आप में से अक्सर लोग ये समझ रहे हैं कि आपका दीन यहाँ पर एक घंटा सर्व करने पर मामला पूरा होगा, और ऐसा नहीं हुआ, कतई नहीं हुआ। कल भी मैंने आपकी खिदमत में आज किया था, ये जो आप यहाँ पर आ रहे हैं एक घंटा यहाँ दे रहे हैं, दो घंटा यहाँ पे दे रहे हैं, कुछ वक्त यहाँ पे दे रहे हैं, ये आपको इंस्पिरेशन दे कि आप बाद में दीन की हिफाजत करें। ये नहीं हो सकता कि आप कहें मैंने चूंकि एक दो घंटे सेंटर में गुजार दिए हैं इसका मतलब ये कि मेरा दीनी जिम्मेदारी पूरी हो, नहीं पूरी नहीं होती है। यहां से इसको असल में शुरू होना चाहिए था, उसके बाद देखना होगा कि आपने दीन के नाम पे करना क्या है, उसके बाद आपको अपने आप से सवाल करना होगा हमने दीन के नाम पे करना क्या है। यानी ये वो क्लास है जिसमें आपने सीखना है, और बाहर दुनिया वो है जहां आपने अमल करना है। और हम लोग क्या समझते हैं, ये जो यहाँ पर आए एक दो घंटा लगा लिया दीन का काम पूरा हो गया, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर आते हैं आर्टिफिशियल कल्चर क्रिएट करते हैं, आर्टिफिशियल कल्चर क्रिएट करते हैं, फिर जैसे यहाँ से वापस जाते हैं अपनी दुनिया में वापस आते हैं। तो हम लोग अपने लिए दो दुनिया बनाए बैठे हैं ज्यादातर, एक वो दुनिया है जो हमें खुश करने के लिए अंदर से, वो कौन सी है, वो सेंटर की दुनिया, यहाँ पर आते हैं अपने दिल को ठंडक दिलवाते हैं हमने अपना काम कर लिया, और बाहर जाके क्या करते हैं, बाहर जाके अपने उस दूसरे वाले इंसान को ठंडक दिलवा रहे होते हैं तो कुछ और करके खुश होगा। अच्छा, हमें करना क्या है, हमें अपनी जिंदगी को एक एक रिदम में लेके आना है, वो रिदम क्या है, अल्लाह की बंदगी, चाहे सेंटर में हो चाहे सेंटर से बाहर, अल्लाह की बंदगी ये चाहिए। अभी अगर दुआए कुमैन पढ़ी इसमें इसमें एक जुमला आया था, उसमें आया था खुदा है तो मेरी जिंदगी को विर्दन वाहिदा बना दे, एक विर्द बना दे। एक विर्द का क्या मतलब है, मैं सारी जिंदगी बस एक काम करूं, वो क्या काम करूं, तेरी बंदगी करूं, तेरा बंदा हूं मैं। आय करीमा की तर्जुमे में इससे इस्तेमाल करूंगा, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाला Amen. शायद पहले दूसरे महीने से जब से मैं ताबीर बना हूँ ये आय करीमा कहीं ना कहीं काम में पड़ जाती है, और जिस किसी ने चंद मजलिसें पढ़ी हो सुनी है जिसने चंद मजलिसें सुनी हो उसने आय करीमा सुन ली होती है। आय करीमा शुरू मारूफ है, आपने अपने बचपन से अब तक पता नहीं कितनी चंद दफा सुन ली होगी, वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, और हमने जिन और इंस को बस इसलिए खल्क किया कि हाँ यही मैं कह माना चाह रहा हूं। अगर जिन और इंस को बस इसलिए खल्क किया कि मेरी इबादत करें तो बाकी वो अपने आप क्या करते हैं? भाई देखिए ना, आप यहां से निकल के जाएंगे ड्राइविंग करेंगे आप इबादत कर रहे हैं, आप सो रहे हैं आप इबादत कर रहे हैं, आप ऑफिस में इबादत कर रहे हैं, आप कमा रहे हैं आप इबादत कर रहे हैं। अगर आप ये कहें ये सब इबादत है तो अपने आप से पूछिए इबादत है या नहीं। अगर आप कहते हैं ये इबादत नहीं है तो फिर आप एक ऐसा काम क्यों कर रहे हैं जिसके लिए आप खलूक नहीं हुए? सालस बात भाई, आपको खल्क अल्लाह ने इसलिए किया कि आप इबादत करें। सही, ये जो हम इबादत कितनी देर करने के भाई, किसी ने कहा भाई कहने लगे कि वो आपने फ्लाइट तो आप कैसे गुजारा, मैंने कहा अच्छा है 13 घंटे आपको फारिग मिल गया तो उसने कहा आप इबादत नहीं कर रहे हो, मैं कहा नहीं कैसे इबादत करूँ 13 घंटे इबादत करूँगा पता नहीं क्या हो जाएगा मैंने सिर्फ इबादत तो कर सकता 13 घंटे। हाँ तो अच्छा अब अल्लाह ने हम खल्क किया इबादत की, अगर इबादत के सिवा कुछ और करो तो आदत की दुकान से बाहर चला जाता। अब क्या मतलब क्या है? अब यहाँ पे एक और जुमला भी अर्ज करूँ सही बात, बोला चाहते इमाम के नाम पर दुरूद भेजे मोहम्मद बहुत नफीस एक दुआ है सलीका में, इंतहाई नफीस दुआ है, दुआए मकारमुल अखलाक, दुआए मकारमुल अखलाक मफातिह जनान के अंदर भी लगी हुई है। इस दुआ को जब मौका मिले कहीं पढ़ लीजिएगा। अच्छा मैं आपसे अर्ज करना चलूँ कि अगर आप क्या चाहते हैं कि इन 20 दिनों को मुफीद बनाएं जो गुजर चुके हैं, तो आप एक काम करने चाहो जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि कभी ये कर दीजिएगा, उसे या तो अपने जहन में नोट कर लें या अपने पास कहीं लिख लें जिंदगी में एक दफा कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने नहीं किया अब मैं आपको खतरनाक बात कह रहा हूँ, मैं करामत के दिन आपको पकड़ूंगा। मैं तो बात लगा रहा हूँ, मेरे बीवी बच्चे नहीं, मेरा दिल नहीं चाहता मैं अपने बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारूं, मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं अपने और दोस्तों के साथ वक्त गुजारूं। आपकी तरह तो कुछ नहीं जो मुझे कराची मिल जाए, आराम से कराची में गैलरी में 300-400 लोग तो होती है, आप खुद बताइए क्या आपको उनके ऊपर कोई फजीलत हासिल है? क्या फजीलत हासिल, क्या वो स्टेज में बैठे की फजीलत है? अल्लाह के नजदीक कोई फजीलत है क्या वो स्टेज में बैठे? आप उनसे ज्यादा जिंदा है? तो ये जो हम यहाँ पर वक्त लगा रहे हैं खुदा हमसे नहीं पूछेगा भाई उनको वहां ज्यादा करना जरूरी है, वहां जो भी याद हुआ है। अच्छा हम लोग अपने एक्सक्यूज ये बना रहे हैं, अल्लाह कबूल कर ले माफ कर देगा गलत कर रहे हैं, कि भाई कम से कम एक दफा सुना तो देना, आपने किया ना किया इनकी मर्जी, उनको तो हम सुनाते रहते हैं, इनको भी सुनाए इनका बदल जाकर फिर भी नहीं किया तो फिर मैं आकर मैं जाना फिर आपको पकड़ूंगा कुछ मंदिर बेकार मिल रहा था, जितने लोग वहां बैठे थे सुनने वाले थे मैं उनको छोड़ के तुम्हारे पास आया था। अब यकीन फरमाइए आप, मैंने जबरन 9 दिन आपसे लिए क्योंकि इन्होंने कहा था कि आप पहली रमजान से, मैं कह रही भाई 15 दिन में कराची में देना चाहता हूँ पाकिस्तान में बैठे, मैंने इनसे कहा 15 दिन में पाकिस्तान में देना चाहता हूँ, मैंने उनका हाथ नहीं रोका, 10 महीने 11 महीने उनके साथ रहता हूँ, वो हमारे बातों का कहे के ऊपर अपनी जान हथेली पे रखी मजारों में आ जाते हैं बेचारे, वो सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। आपने देखा 1 जनवरी की रात को जो शहीद का जनाजा लेके हम गवर्नर हाउस में गए थे, औरतें मां बूढ़े जवान जान हथेली पे रख के खड़े हुए थे हमारे साथ, 6 बजे 1 जनवरी सब सर्दी के अंदर 4 बजे 3-4 बजे दोपहर को निकले थे, 6 बजे सुबह तक रहनुमाई नजारे के अंदर था, शहीद के जनाजे के साथ साथ चल रहे थे, सब सर्दी पड़ रही थी,
कोई अरेंजमेंट नहीं था, लॉजिस्टिक कुछ नहीं थी, ये नहीं पूछा आपने हमारे, उनका हक है।
तो हमने कहा कि भाई 15 दिन तो आप लड़के भाई 15 दिन होंगे तो यहाँ पे कोई नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये नहीं होगा। बड़ी मुश्किल से 10 दिन की बात हुई, 9 दिन की बात हुई, तो हम चलो 9 दिन, तो मैंने 3 दिन इस्लामाबाद में लगाया, शुरू किया 3 दिन इस्लामाबाद में लगाया, फिर बाद में कुछ दिन कराची में लगाया, उससे पहले 3 दिन कराची में और प्रोग्राम लग गया, थोड़ा सा कंपनसेट हो जाएगा, चलो ठीक है ब्रह्म भी कुछ नहीं। अब मेरा दिल कुड़ता है बार बार जब मैं बाहर जाता हूँ कि भाई ये तो मैंने अल्लाह मुझसे कह रहे हम हर बार गए हिंदू, ज्यादा से ज्यादा रास्ता ये है कि हम कहें खुदा एक दो इनको भी सुना देंगे, क्योंकि और सुना देंगे। हमने तय किया कि माह मुहर्रम की पहली अशरे में दूसरी दफा नहीं जाऊंगा, एक दफा यहाँ एक दफा चला गया तो खत्म ना, क्यों मैंने अपना काम कर दिया, दुआ भी ना इस खाते में आपकी खिदमत में आता हूँ, पकड़ूंगा कभी ना कभी। आप दुआ मकर अफलाक जरूर दे दीजिए, बोला चौथे इमाम के जखीरों में से जखीरा। उस दुआ में मौलाना ने जुमला इरशाद फरमाया, बड़ा अजीब नफीस है, मौलाना ने फरमाया ऐ खुदाया मेरी जिंदगी किसी ऐसी जगह खर्च ना हो जिसके बारे में कयामत के दिन तूने सवाल नहीं करना है, मेरी जिंदगी किसी ऐसी जगह खर्च ना हो कयामत के दिन तूने उस बारे में सवाल नहीं करना है। मसलन मैं मिसाल देता हूं, बस फर्ज कीजिए मेरी पूरी जिंदगी खर्च हो रही है या मेरी जिंदगी का एक महीना खर्च हुआ है इस बात में कि मुझे मर्सिडीज बेंज लेनी है, मुझे अच्छी गाड़ी लेनी है, उसके लिए मुझे कमाना है, उसके कमाने के बाद पैसे खर्च करूंगा, क्या करूंगा, एक अच्छी सी गाड़ी लूंगा, गाड़ी के बारे में खुदा ने सवाल करना है ना उसके लिए। एक महीने कहां खर्च किया मैंने, एक ऐसे काम पे खर्च कर दिए जिसका खुदा ने कयामत के दिन सवाल नहीं करना है, बल्कि उल्टा सवाल करना ये वीक है जैसे। इमाम फरमा रहे हैं खुदाया मेरी जिंदगी ऐसी जगह पे खर्च कर जिसके बारे में कल तूने सवाल करना है, और ऐसी जगह पर खर्च ना हो जिसके बारे में कल तूने सवाल नहीं करना है, और बदकिस्मती से ऐसा उल्टा ना हो कि ऐसी जगह पर खर्च कर दो जिसके बारे में पूछे कि तूने किया क्यों कर सही है। मिसाल के तौर पर मैंने कई घंटे एक काम गुजारा, एक काम में खर्च कर दिया, और ऐसा काम था जिसमें मैंने सवाल ही नहीं करना था, गलत जगह पर खर्च हो। आप अपनी जिंदगी की ऑरिएंटेशन को पकड़ने सबसे पहले, आपकी जिंदगी है, आपकी जिंदगी का ऑब्जेक्टिव क्या है। तेजी से फिर एक और बात कहना चाहूँ, फिर मैं आज कर रहा हूँ शब जुमा के बारे में। अच्छा मुझे इससे भी थोड़ा सा परेशानी है, आपका वक्त काफ़ी लग चुका है, क्या काफ़ी टाइम गुजर चुका है, लेकिन ये मैं फिर भी चाह रहा हूँ चंद मिनट्स हम इसके ऊपर और लगा दें। एक बात और आपकी खिदमत में आज कर रहा हूँ, मुझे अंदाज़ा हुआ है कुछ अपनी लाइफ से देखते हुए, कुछ लोगों से देखते हुए, हम लोग अजीब बचपने के अंदर हमारी प्रायोरिटीज चेंज होती रहती है, मुसलसल चेंज होती रहती है। मुझे याद है जब मैं बचपन में था तो मेरे पास एक गाड़ी थी, और मुझे अभी तक याद है कि मैं अपने जहन में उस गाड़ी के बारे में सोच रहा था कि इस पर बैठ के मैं कराची भी जा सकता हूँ, उस वक्त मैं लालगुंडी में रह रहा था। तो मैं उस गाड़ी का मैं लिया था बचपने में, तो मैं ये समझ रहा था कि इस गाड़ी में बैठ के मैं कराची भी जा सकता हूँ, सही वो खिलौना थी, ठीक है। तो चंद साल के बाद मुझे समझ में आया कि जो पीछे में दास्तान बना रहा था वो सब कसर फजूल है। उसके बाद जब मैंने 20 साल क्रॉस कर लिए तो फिर अचानक मुझे समझ में आया कि मैंने 10 से लेकर 15 तक जो कुछ खेल खेले दिमाग के अंदर वो सब फजूल थे। उसके बाद जब मैं 30 साल के ऊपर गया तो मुझे समझ में आया कि जो इससे पहले मैंने 5-6 साल खेल खेले वो सारे के सारे फजूल थे। हम हर कुछ साल के बाद अपनी प्रायोरिटीज चेंज कर देते हैं, और हमें ये समझ में आने लगता है कि इससे पहले जो गेम कर रहे थे वो सारा गेम था, बस था। मुझे सिर्फ डर, अगर मुझे 60 साल पहुंच के पता चला कि जो 50 साल गेम खेला वो फजूल था फिर क्या होगा, तो वापस जाने का रास्ता है नहीं। आगे सिर्फ कितने दिन रह गए मुझे नहीं पता। अच्छा इसका सोल्यूशन क्या है, ये तो है ह्यूमन नेचर में से कि वो अपने लिए चॉइस बनाता है, फिर किसी बार उसको पता चल जाता है कि चॉइस थे, ये रियलिटी नहीं थी। और ये चेंज होता रहता है, मैंने बताया शुरू में खिलौने होते हैं, फिर बाद में जिस्मानी ख्वाहिशात हो जाती हैं, फिर शहवती ख्वाहिशात हो जाती हैं, फिर माल और दौलत हो जाती है, फिर सोशल स्टेटस हो जाता है, फिर रिस्पेक्ट और ताल्लुकात हो जाते हैं, और आखिर में जाके इंसान को पता चलता है असल पूरी दुनिया में जो कुछ है वो सब फजूल है। क्यों? क्योंकि मैंने दुनिया में रहना ही नहीं। आप अपनी प्रायोरिटी शुरू से ही सही कर लीजिए, खिलौने से ना खेलते रहिए। क्यों? 5 साल 10 साल बाद आपको पता चलेगा फजूल का ही, फिर वापस जाने का कोई चांस नहीं होगा। तो प्रायोरिटी पहले से सेट कर लीजिए, भाई इस दुनिया में रहते हुए जो मुझे असल में अचीव करना है वो क्या है। और इसकी खातिर मैंने 3 दिन आपका वक्त दिया और हजरत खुदा के ऊपर बात की कि जो असल में आपने अचीव करना है उसका कोई ताल्लुक इस दुनिया से नहीं है। ये यहाँ रिक्वायरमेंट्स हैं, यहाँ की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब मुझे कपड़े पहनने हैं, ये यहाँ पे दुनिया की रिक्वायरमेंट है। मुझे खाना खाना है, मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो मुझे पूरी करनी है, क्या ये ऑब्जेक्टिव है? नहीं। अपनी दुनिया में वाज़ह तौर पर डिस्टिंग्विश कर लीजिए अपने लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। रिक्वायरमेंट्स को उतना टाइम दीजिए जो रिक्वायरमेंट्स को देने का, और ऑब्जेक्टिव को उतनी अहमियत दीजिए जो उनको देने की। अब अपने आपसे एक और सवाल कीजिएगा, अब तक की जिंदगी की रिक्वायरमेंट को गुजरी है, ऑब्जेक्टिव को गुजरी है? ज्यादातर रिक्वायरमेंट को गुजरी, यानी हम जिंदा हैं क्योंकि हमें जिंदा रहना है, और हम अब तक अपने आप से नहीं पूछ पाए कि हम जिंदा हैं क्यों। खा रहे हैं क्योंकि खाना है, गाड़ी चला रहे हैं क्योंकि गाड़ी चाहिए, घर चाहिए तो घर चाहिए, ये नहीं पूछ रहे कि ये सब किस लिए चाहिए और वो मिला या नहीं मिला है। उसको मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था, वो तज़किरा नफ्स है। और मैं आयत का तर्जुमा भी एक और तरीके से कर दूं, वमा खलक्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हमने जिन और इंस को बस इससे खल्क किया कि हमारी बंदगी करें, ना कि सिर्फ इबादत करें, हमारी बंदगी करें। हाँ, अब बात समझ में आती है। मैं ड्राइविंग भी कर रहा हूं तो बंदगी में हो सकती है अगर हदफ सही हदफ हो, अगर मैं सो रहा हूं तब भी बंदगी हो सकती है अगर हदफ सही हदफ हो, और अगर मैं कमा रहा हूं तो बंदगी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है अगर कमाई का हदफ सही हदफ हो। अगर मैं कुछ लोगों से मिलने गया हूं तो ये बंदगी हो सकती है, ये भी बंदगी हो सकती है अगर उन लोगों से मिलने का हदफ सही हदफ हो। आप जहां कहीं भी जाएं ये बंदगी हो सकती है अगर आपका ऑब्जेक्टिव सही हो, ऑब्जेक्टिव सही हो तो फिर बंदगी हो सकती है। हाँ, बाज जगह ऐसी होगी जो बंदगी नहीं हो पाएंगी, क्यों? असल वो मुखालिफत है उधर, फिर बंदगी कैसे हो सकती है? इस तरह अपने आप को नोट करना शुरू कर दीजिए, अपने आप से पूछना शुरू कर दीजिए। मसलन आप अपने आप से एक क्वेश्चन कर सकते हैं, पिछले 24 घंटे बंदगी में गुजरे हैं या मुखालफत में गुजरे हैं? कितनी देर बंदगी थी, कितनी देर मुखालफत थी? और बिल्कुल यही काम पूरी जिंदगी के साथ कर सकते हैं, अब तक की जिंदगी बंदगी थी या मुखालफत थी? बंदगी में मेरे अचीवमेंट्स क्या है? और मैं एक और बात भी सोचता हूँ, मैंने किताब पढ़ी थी बहुत अच्छी लगी, मैं उसको 2-3 जगह रेफरेंस देता हूँ, दे चुका हूँ बल्कि शायद ज्यादा। उसमें बहुत अच्छा डिफाइन किया था कि एसेट्स किसे कहते हैं, बहुत अच्छा डिफाइन किया था एसेट्स। उसने कहा एसेट्स वो चीज है जिस पर आप मजीद मेहनत ना करें और वो आपको कमा के दे, तो वो आपका एसेट है। मसलन गाड़ी आपकी एसेट नहीं है, क्यों? गाड़ी खर्चा करवा के ले, कमा के नहीं दे। फिर उसने कहा कि वो घर जिसमें आप रह रहे हैं ये आपका एसेट नहीं है क्योंकि वो तो आप कंज्यूम कर रहे हैं। हाँ, वो घर जो आप खरीद चुके हैं, जिसकी सारी किस्तें पे कर चुके हैं और वो अब आपको रेंट पर जाने की वजह से कमा कमा के दे रहा है, हाँ ये आपका एसेट है, सही। अब मैं अपने आपसे सवाल करता हूँ, मेरी इतनी जिंदगी गुजर गई है, आखरत के लिए मेरा एसेट क्या है जो मेरे मरने के बाद भी मुझे कमा कमा के देता है?
ये मेन क्वेश्चन मेरे लिए सर, क्यों शहर भी बहुत नजदीक है, शहर तो दुनिया से जाने वाला हूँ, हॉस्टिलिटी बहुत ज्यादा है, स्टूडेंट भी कम नहीं है, पाकिस्तान भी है, सभी कुछ है, तो अगर मैं अभी यहीं पर ब्रेक करने पर मजबूर हो गया तो कौन से ऐसे एसेट्स हैं जो मुझे कमा कमा के देते रहेंगे? क्यों? क्योंकि वहां पर मेरी जिंदगी छोटी नहीं है, वो अवधि जिंदगी है। अगर मुझे किसी जगह एक महीना गुजारना होता है तो मुझे एक महीने के लिए एसेट चाहिए होते हैं, और अगर मुझे कहीं लाखों साल गुजारने पड़ते हैं तो मुझे लाखों साल के बराबर एसेट्स चाहिए। तो मैं कहां से लाऊं? यही जिंदगी जहां से लाने हैं। सही, अब शब जुम्मा के हिसाब से कुछ जुमला अर्ज करता हूँ, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले एक बार रिकॉर्ड समझ में आई जो मैं आपके साथ प्रयास करता था। हमेशा कुछ ना कुछ करते रहिए अल्लाह की राह के, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहिए। मुझे 28 साल हो गए तालिबे इल्म बने, मेरी जुमला मुझसे बहुत दफा सुनी, मैं बहुत दफा दोहराऊंगा इसे, और ये इस यकीन दहानी के लिए होता है, आपको याद दिलाने के लिए होता है कि भाई मैं तजुर्बेकार आदमी हूँ, मुझे 28 साल हो गए हैं। मैं मजाक भी करता हूँ, 28 साल ज़रा गाड़ी भी चलाओ तो गजल के बारे में सब समझ में आ जाएगा, गजल का मूड कैसे चेंज होता है। मुझे 28 साल हो गए यही समझने की कोशिश करते हो। 28 साल बहुत बड़ी मुद्दत होती है, मैं सारी लाइफ गुजार दी इसके ऊपर, मेन जो मेरी लाइफ। मुझे एक बात समझ में आई, शायद हम में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसका दीन स्ट्रेट ग्राफ ऊपर जाना शुरू हो जाए, किसी के साथ ऐसा नहीं होगा। हम सब का दीन एक वेव बनाता है ग्राफ में, वो कैसे? कभी दीन में दिल चाहता है और ऊपर जाता है, कभी एकदम से डाउन साइड नीचे जाता है, कभी ऐसा होता है नमाज सब पढ़ने का दिल चाहता है, कभी ऐसा होता है बाजी नमाज भी नहीं पढ़ता है, कभी ऐसा होता है दुआ में एक घंटा पढ़ता है, कभी कहता है मैं कुरान भी नहीं पढ़ता, ये होता है। तकरीबन सबके साथ होता है, किसी का दीन का ग्राफ स्ट्रेट अपवर्ड नहीं है, सबका यूं फ्लक्चुएट करता रहता है। अच्छा, मैंने सोचा कि ये जब ऊपर जाता है तो जब तो वैसे ही ऊपर जा रहा होता है, असल मुश्किल कब आती है? जब ये नीचे जाता है, उस वक्त क्या हो? अच्छा, उसमें क्या होता है? आपने 2 महीने कोई अचीवमेंट की होती है तो एक दफे नीचे जाते हैं, 4 महीने नीचे जाते हैं, अब वहां से दोबारा मेहनत करके फिर 0-0 पर आए, फिर पिछली पीक पर आए और फिर वहां से आगे जाए, तो जिंदगी चाहिए इसके लिए। ऐसे नहीं होता। मुझे एक बात समझ में आई, वो ये है कि इसको नीचे जाने से कैसे रोका जाए। फिर एक और बात भी समझ में आई कि इससे नीचे कभी ना कभी जाना होता है, इसको आप बहुत ज्यादा नहीं रोक पाएंगे, नीचे जाए ही नहीं, तो फिर एक काम करें, एक जगह पर रुक जाए, उससे नीचे ना जाए, बस। ये तो मुझे पता है कि यहाँ से इसको फॉरवर्ड ऊपर नहीं जाएगा, ये भी मुझे पता है ये फ्लक्चुएशन देगा, एक डिप मारेगा नीचे की तरफ, सिर्फ डिप मारे, बिल्कुल ऐसा ना जैसे वर्ल्ड इकोनॉमी आजकल बिल्कुल डिप मार के नीचे जाएगा और डबल डिप रिसेशन में आ गई, ये ना हो का मतलब, ठीक है डिप करे थोड़ा सा जाए फिर ऊपर आओ, फिर इसको कैसे पकड़े? मुझे एक बात समझ, अगर मुसलसल कुछ ना कुछ करते रहे थोड़ा 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 थोड़ा, तो ये बहुत नीचे नहीं जाता है, थोड़ा सा नीचे आएगा, कोई ना कोई चीज संभाल दे। सरेंडर ना करें शैतान के सामने, अल्लाह रहीम है उसकी रहमत को दे, शैतान के सामने सरेंडर ना करें। मसलन क्या होगा, खुदा ना करे नाउज़ुबिल्लाह किसी की वजह से गुनाह हो गया, जैसे ये गुनाह हो गया ना सारी इंस्पिरेशन खत्म हो जाती है इंसान, मैं क्या कुरान पढ़ूंगा, अपने आप को संभाल। मेरे सामने 2 रास्ते हैं, एक शैतान है एक खुदा है, ठीक है एक मौके पे मिस्टेक हो गई शैतान की तरफ चला गया, तो क्या आप शैतान को ही हमेशा रहना है? नहीं, खुदा किसी को कोई रास्ता नहीं, खुदा सिर्फ एक रास्ता जो मेरे पास मौजूद है, ठीक है शैतान ने मुझे धोखा दिया, मैं वापस आऊंगा, और खुदा इस वापस आने को बहुत पसंद करता है, बहुत पसंद करता है। बार बार कुरान करीम में फरमाता है इस्तग़फ़िरु रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैह, अपने रब के हुजूर इस्तग़फ़ार करो फिर उसकी तरफ पलट के वापस आओ, वापस आओ।
جب کبھی کوئی مسٹیک ہوئی ہے استغفار کرو واپس آؤ.
اس کو واپس آنا پسند ہے,
اس کو پتا ہے میں نے انسان ضعیف بنایا ہے, کمزور بنایا ہے, جس کے اندر بہت ساری چیزیں کمزوری کی ہیں. اس کو پتا ہے یہ بلنڈر کرتا ہے. اس کے بعد وہ جانتا ہے یہ بلنڈر کرتا ہے, کیسے کہتا ہے کہ ایک دفعہ جو بلنڈر کرے گا اس ختم ہو گیا نا. اس نے کہا نہیں, کرو توبہ, کرو توبہ کر کے میری طرف واپس آؤ. کچھ نہ کچھ کرتے رہے, کیا کرتے رہے. میں نے اپنی زندگی کے لیے یہ ترکیب سوچی, ڈرائیور تھکنے لگا, میں نے کہا اوپر جاتے ہیں نیچے آتے ہیں پھر اوپر جاتے ہیں پھر نیچے آتے ہیں. تو میں جب تیسری چوتھی دفعہ ایسا ہوا تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ وہاں پہ اتنی زندگی نہیں ہے, اگر تم نے اگلی دفعہ ڈپ مارا پتہ نہیں واپس آپ کو نہیں آؤ گے, اس سے پہلے بھی نیچے جاؤ, اس کا کوئی سولوشن دیکھو. دو تین دفعہ ہو چکا ہے, کتنی دفعہ کرنا ہے. پھر مجھے سولوشن سمجھ میں آیا, میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ ان شاء اللہ اس کی طرف توجہ کیجیے گا. درود بھیجے محمد والے. سولوشن سے ایک یہ ہے, اپنا ایک منیمم اسٹینڈرڈ بنائیں, ایک منیمم اسٹینڈرڈ. اس منیمم اسٹینڈرڈ سے نیچے نہ آنے دیں, چاہے جبر کرنا پڑے. مثلاً تشریح, مثلاً میں نے اپنا ایک منیمم اسٹینڈرڈ بنایا, وہ کیا, اتنا قرآن کریم روزانہ پڑھوں گا. دل چاہے گا تو زیادہ پڑھ لوں گا, اور نہیں دل چاہا تو میں کہتا ہوں نہیں, اب دل چاہے یا نہ چاہے یہ تو میں کروں گا. اچھا میں اسی مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں, فرض کریں صبح کو نماز قضا ہو گئی, اب انسان اٹھتا ہے تو یہ میں کیا کروں, نماز قضا ہو, اب قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ جب نماز قضا پڑھ چکی. صحیح, میری لوجک اس وقت کیا کہہ رہی ہے, میری لوجک یہ کہہ رہی ہے فوراً نماز کی قضا کرو اور جو ڈیلی کا شیڈیول ہے اسے فالو. کیوں, ایک معاملے میں شیطان نے دھوکہ دیا ہے, باقی میں دھوکہ تم خود کیوں دے رہے ہو اپنے آپ. شیڈیول فالو کرو اپنا, ایک بیسک شیڈیول بنا لو, اس بیسک شیڈیول سے نیچے مت آؤ, اس کے اوپر کوئی چیز کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے. سو بیسک شیڈیول کیا بنایا, مثلا فرض کر لیتے ہیں آپ نے کہا میں روزانہ ایک صفحہ قرآن کریم پڑھوں گا, کچھ بھی ہو یہ تو پڑھوں گا ختم. اب میں آپ کے لیے اس کو پورا ڈرافٹ نہیں کرنا چاہتا, ہر آدمی اپنے لیے خود کرتا ہے. ممکن ہے کسی کے لیے میں کہوں ایک سوال ہو گیا تو ایک سوال کچھ بھی نہیں ہوتا, کسی سے کہوں ایک سوال ہو گیا بہت ہوتا ہے, وہ اپنی مرضی سے آپ خود بنائیں. لیکن کچھ چیزوں کو اس میں ایسا ڈال دیں جو آپ کو ہمیشہ بچائے, آپ کو ہمیشہ بچائے. کچھ چیزیں بہت طاقتور ہیں, دین کے اندر انسان کو ختم نہیں ہونے دیتی, وہ بالکل ایسا جیسے لائف جیکٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے کہ سوئمنگ نہیں آتی ہے لیکن کم سے کم ڈوبنے تو نہیں دے گی, اوپر ہی رہیں گا. تو آپ اپنے لیے کوئی لائف جیکٹ رکھے ہیں کہ بھائی کم سے کم میں گروں کبھی اس کشتی سے باہر گر گیا تو ڈوبوں تو نہیں, کم سے کم پھر کبھی موقع ملا دوبارہ کشتی میں بیٹھ جاؤں گا. صحیح, کم سے کم کیا چیز بنا ہے یہ آپ اپنے لیے خود ڈھونڈیے گا. میں آپ کو ایک دو مشورے کے طور پہ کہوں گا, ایک دو چیزیں میں واجبات میں سے نہیں کہوں گا کیونکہ وہ تو کرنا ہی کرنا ہے, وہ تو آپ ہی لگا سکتا ہوں. میں ایک ٹرک آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں, اس نے بہت فائدہ دیا ہے بہت سارے لوگوں, کیونکہ مجھے کافی عرصہ ہو گیا اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے تو لوگ, اچھا میں نیٹ پہ بہت زیادہ اسپیچز دیتا ہوں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں, تو اس میں کیا ہوتا ہے لوگ بہت زیادہ سننے والے آڈینس بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, آڈینس زیادہ ہونے کی وجہ سے پھر ان کی طرف سے فیڈ بیک بھی آتا ہے, اس فیڈ بیک سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے. کچھ کچھ لوگ بتاتے کہتے ہیں مولانا آپ کی اتنی اسپیچز سنیے اس بات نے مجھے زندگی میں بہت مدد دی ہے, تو میں اس کو پکڑ لیتا ہوں, کیونکہ اس بات نے بہت سارے لوگوں کو مدد دی ہے اس مطلب, اور دوسرے لوگوں کو بھی اس سے مدد مل سکتی ہے. صحیح, ان میں سے ایک بات یہ بات ہے. صحیح, اچھا مجھے بھی اندازہ ہے کہ میری زبان جو ہے وہ گناہگار زبان ہے, لڑکڑاتی ہوئی زبان ہے, یہ بھی مجھے اندازہ ہے کہ ہم سب لوگ کمزور ہیں. صحیح, جب مجھے ایسی کوئی بہت امپورٹنٹ بات کہنی ہوتی ہے تو میں نبی اور ان کی اولاد کا سہارا لیتے ہوئے لوگوں سے کہتا ہوں درود بھیجے محمد والے. اپنی دعاؤں میں ان لوگوں کی مغفرت کے لیے دعا شروع کرتا ہوں, اس کا اثر میں بہت عجیب دیکھا. یعنی مثال کے طور پہ جیسے ہی مجھے طے ہوا کہ مجھے سڈنی جانا ہے تو میں کیا کروں گا,
ऑडियंस की मफ़रत के लिए अपनी दुआओं में जिक्र शुरू कर दूंगा। मैंने देखा इसका असर बहुत ज़्यादा, इसका एक रूल है, वो क्या है, एक दूसरे को दुआ दें। आपकी जिंदगी में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको अपनी दुआओं में याद रखें। इतना अजीब असर खुदा बढ़ा देता है जिसकी कोई हद नहीं। बस आप लोग सेंटर में आते हैं, एक दूसरे को जान पहचान लो, एक दूसरे को दुआ दिया, जहाँ आप अपने बाप के लिए, वालदैन के लिए मगफरत की दुआ कर रहे हैं, अपने दोस्तों के लिए मगफरत की दुआ कर रहे हैं। मतलब आपने क्या कहना है, आपने कहना है अल्लाह मगफिर, वो जो लोग सेंटर में आते हैं, सही, इसी को भी खुदा काउंट कर रहा है, इसको भी काउंट कर रहा है। और इसका एक खास असर है, इसको हमने बहुत आजमाया है। अब एक दूसरे को दुआएं देना शुरू करें, उससे फिर देखिए आपकी जिंदगी में क्या असर पड़ता है। इसके ऊपर बहुत सारे वाक्यात मैं स्किप करता हूँ, बात के ऊपर आता हूँ, मुझे कहनी है आपसे क्या कहनी है। अब आज रात के लिए डूबी डुबा ये प्रैक्टिकल एक ऐसा काम, जो एक तो काम मैं आपको कह चुका हूँ गर्म गर्म गंगा, दूसरा ये ये है कि अपनी ज़िंदगी के अंदर हर रोज़ एक सजदा ऐसा करें, कम अज कम 2-3 मिनट ऐसा, एक सजदा ऐसा करें 2-3 मिनट, या 2-3 मिनट कम करके कह रहा हूँ। मैं अपने बाप लोगों से कहा 10-10 मिनट पे चल गए, एक बंदे से कहा वो आधे घंटे पे चला गया, पता नहीं क्या मैंने लगता है सही। स्टार्टिंग में कह रहा हूँ एक सजदा ऐसा कर लें, वाजिब नमाजों से हट कीजिए, वाजिब नमाजों से हट, आप नमाज पढ़ ली, नमाज पढ़ के फारिग हो गए, वाजिब नमाज पढ़ ली आपने, अब सजदे में जाए 2 मिनट का सजदा करें। जब सवाल पहला मतलब आपका इरादा है कि आप इरादा करेंगे आपने करना है, उसके लिए आप अपने जीवन को एक टाइम एलोकेट कर दीजिएगा, वरना ये खत्म हो जाएगा, नहीं आप कर पाएंगे। बस आप कहिएगा मैं जो लंबा सजदा करना है 2 मिनट वाला, उस वक्त वो करूँगा, या रात को सोने से पहले करूँगा, या दिन में करूँगा। फिर ऐसा रखिएगा जो कज़ा नहीं होनी चाहिए, निकलना नहीं चाहिए, दिन में एक दफ़ा कम अज़ कम ज़रूर होना चाहिए, सही। अच्छा बहुत बड़ा मसला तो यही है कि आप इरादा करें कि हाँ मैं करूँगा इंशाअल्लाह, अल्लाह तौफीक दे इंशाअल्लाह, मुझे आपको दुरूद दे मोहम्मद वाले मैं स्कैन करके देख रहा हूँ कितने लोग वाकई में करेंगे नहीं करेंगे, बिल नजर आ रही है नहीं आ रही है, इरादा नजर आता है नहीं आता है। मैं एक और बात भी आपसे करना चाहता हूँ, आपके और हमारी जिंदगी में आखिरत के लिए एसेट्स इतनी आसानी से नहीं बनेंगे, इनके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो जैसे आज की रात है, हम इसको टर्निंग पॉइंट में चेंज कर सकते हैं, ये हमारा टर्निंग पॉइंट हो सकती है। कैसे टर्निंग पॉइंट हो सकती है, अगर आप इस आदत को ले। मैं अपने सुनने वाले के कमेंट्स बताऊँ दुनिया से कॉल हो चुका, उसने अपने कमेंट में ये बात कही, अपनी साहिबजादी से कहा जो हमारे काम करती हैं इदारे के अंदर, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे वालिद ने मुझसे ये कहा था, वो फक हो चुका, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने इस आदमी से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें सीखी हैं, सिर्फ अफसोस इस बात का है कि मैंने बुढ़ापे में सीखी, काश मैं जवानी में सीख ली। उनमें से एक ये बात, उनमें से एक बात ये, आप इसको टर्निंग पॉइंट बना सकते हैं जिंदगी। अगर आप इस हैबिट को पकड़ लें, क्या करना है, 2 मिनट निकाल लें। अच्छा आप इंसाफ से बताइएगा, आपके पास 2 मिनट वक्त नहीं होगा, इसका मतलब है अगर आपने नहीं किया तो क्या उज़्र ये है कि वक्त नहीं है, उज़्र ये है कि शैतान ने हमला किया। वक्त 2 मिनट निकालना मसला नहीं है, अपनी जिंदगी में देखिएगा कितने मिनट ज़ाया हो गए। असल इशू क्या है, तवज्जो दें, टर्निंग पॉइंट बना सकते हैं उसको यहाँ। अब क्या करें, हर रोज 2 मिनट का एक सजदा करें। पहली मुश्किल ये होगी कि आप करेंगे या नहीं करेंगे, एजम्पशन ये ले लेते हैं कि आपने इरादा कर लिया है, रिज्यूम कर लिया कि आपने इरादा कर लिया। दूसरा मसला ये है, उस 2 मिनट में करेंगे क्या,
क्योंकि जैसे आप नंबर सहायता करना शुरू करेंगे आप चंद सेकंड के अंदर कर देंगे और आपका जहन ही कहेगा कि भाई मैंने दो मिनट करना है, करूं क्या इससे। मैं मशवरे के तौर पे कह रहा हूं, मसलन आप ये कह दीजिए मैं सजदे में जाके 30 दफा दुरूद भेजूंगा, चलो दो मिनट गुजर गए, 50 दफा दुरूद भेजूंगा, दो मिनट गुजर गए, ये रास्ता ये हो सकता है। बस आपके मैं सजदे में जाके फला जिक्र करूंगा, दो मिनट गुजर रहे हैं, ये हो सकता है। इससे बनकर भी एक काम हो सकता है, वो क्या हो सकता है? अब एसेंस अस एसेंस मैं ऐसा कर रहा हूं कि बच्चे के आने की आवाज सुना दूसरे होने से मुझे भी डिस्टर्ब हो। अस काम ये करना है, आप सजदे में जाइएगा और जाकर खुदा से कलाम कीजिए, खुदा से बात करना शुरू कर। आप मुझसे कहेंगे भाई मैं हम इंसानों से बात कर सकते हैं, खुदा से क्या बात करें? जो आप दुआ मैंने भी पढ़ी ना, सारी की सारी खुदा से बात करें, सब खुदा से डायलॉग है। इतने यार रब्बे आए सब खुदा ही, इसमें जितने सीधे इस्तेमाल हुए सब ए तुम खुदा मुखातिब। दलम तो नफसिया खुदा है, मैंने अपने नफ्स को जुल्म किया। या गयासल मुस्तगीसीन ए मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करने वाले, या सही अलरजा ए जल्द राजी होने वाले, सब खुदा से काम। मैंने बाद लोगों को देखा है तवाफ करते हुए दुआ अबू हमजा सुमानी पढ़ रहे होते, तवाफ करते हुए दुआ को मैंने बहुत देखा है। सही, अब क्या करें सजदे में जाए? अच्छा आप कहेंगे भाई मुझे अरबी आती नहीं है, ये जो आप बता रहे हैं अरबी में तो मैं आपसे कहूँगा आप उर्दू में पढ़ें। आप कहेंगे मुझे दुआ अबू हमजा सुमानी याद ही नहीं है, दुआ को मैं याद थोड़ी कि मैं उर्दू में पढ़ूँ, मैं और काम कहूँगा, मैं कहूँगा भाई आप दुआएं मत पढ़ें, आप खुदा से ऐसे बात करें जैसे आप उर्दू में किसी और से बात करते हैं। जिस जिन बच्चों को इंग्लिश ज़्यादा अच्छी लग रही है जबान को उनके है वो इंग्लिश में खुदा से करें, खुदा की कौन सी जबान थोड़ी होती है। जिस जबान में चाहते हैं खुदा से बात करें। फिर क्वेश्चन रखता हूं क्या कहें? मैं नहीं चाहता आपके जहन में कोई क्वेश्चन खाली रह जाए, मैं आखिर तक ले जाऊंगा इसे। आप क्या कहें? जो अपनी मुसीबत परेशानी दर्द मुश्किल जो है वो कह दें, बस जो भी मुश्किल है। आपके जिस्म में दर्द हो रहा है, आप कह रहे हैं खुदा मेरे जिस्म में दर्द इसका इलाज करो। अच्छा ऑनेस्टली मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता खुदा से, तो फिर मैं क्या कहूँ खुदा से? मुमकिन को क्या मुझे छोटी छोटी बातें कहते हुए अच्छा नहीं लगता, अलबत्त खुदा को अच्छा लगता। एक अजीब रिवायत पढ़ी मैंने, उसमें लिखा था है मूसा मुझसे मांगो चाहे जूते का तस्मा ही क्यों ना हो, मुझसे मांगो मैं दूंगा। मांगने में क्या हर्ज है? आपको कोई परेशानी ना हो आप खुदा से मांग ले, मैं आपकी थकावट दूर करने के लिए बता रहा हूँ। एक बंदा खुदा ने एक बिजनेस शुरू किया ट्रैवल एजेंट का, पहला दिन था नखा दुबई में था शायद, पहला दिन था उसने हदीस के साथ अखवाई ऐसे, उसमें हदीस के साथ हुई जो उसके बाद दुआ मांगने लगा तो खुद ही दुआ के लिए हाथ खड़े कर दिया। अब वो जो दुआ मांगने को रुक गए चलो ये दुआ मांग ले तो मैं भी दुआ मांग पाता, तो उसने दुआ में ये कहने का खुदा या मुझे 1 लाख धर्म का बिजनेस दे दिया आज यहाँ सब ने कहा ठीक है चलो। उसके बाद किसी ने जाकर उससे कहा अन्ना आदमी पहले दिन को 1 लाख रुपए का बिजनेस मिलता है 1 लाख दिरहम का, कहने का मुझे नहीं पता कि 1 लाख दिरहम का बिजनेस पहले दिन नहीं मिलता, पता होना चाहिए। कहने का भाई तुझसे नहीं मांग रहा हूँ खुदा से मांग रहा हूँ, तुझसे मांगता तो नहीं मिल सकता, मैं खुदा से मांग रहा हूँ खुदा तो दे सकता है। अच्छा नहीं भी दिया तो क्या हुआ? खुदा से मांगना ही था, मांग लिया क्या, इसमें कौन सी बुराई है? खुदा को किसी चीज को बुरा नहीं समझता, वो इसको पसंद करता है कि तुम उससे बात करो, मांग लो जो मांग है। एक बंदे ने कहा माना मेरी शादी नहीं होती, मैं कहा भाई तू खुदा से क्या मुझसे क्या कह रहा है, खुदा से कहो शादी नहीं मैं तो शादी करो, मैं भी कोशिश कर दूंगा लेकिन तू अपने काम करो वहां पर, वहां पर मैं सारे काम कौन तो बीच में, फिर जो मुश्किल है आपको खुदा से कहो, आपको जो मुश्किल है आप क्या करें आप खुदा से कहना शुरू। अच्छा बस आप ये कहेंगे भाई मैं आज तक खुदा से बात नहीं की, ऐसी बातें नहीं की हैं, तो मैं कहता हूँ ये भी खुदा से कह दो, कहो खुदाया मैं तेरा वो बंदा हूं जिसने 40 साल में तुझसे कभी बात नहीं की, आज पहली दफा तुझसे बात करने आया, और खुदा मैं तुझसे वादा करता हूं कि मैं हर रोज तुझसे बात करूंगा। अगर आपने जब से यही जुमले कह दिए ना, ये भी खुदा कबूल कर लेगा। क्यों? वो देखेगा मेरा एक बंदा था आज तक मेरा दरवाजा नहीं खटखटाया, अब इसने दरवाजा खटखटा दिया। ये है खुदा है। मैं एक बात सोचता हूँ, मैं कभी कभी चैरिटी पे काम करता हूँ पाकिस्तान में, लोगों से ज्यादा मेरे घर पे नहीं आना क्योंकि मुझे सिक्योरिटी का रिस्क हो जाता है। बहुत कहता हूँ कोई मेरे घर पे नहीं आए, जिसको कॉल कॉल करो, ऑफिस जाओ, घर पे कोई नहीं आए क्योंकि फिर सिक्योरिटी का रिस्क हो जाता है, सारे हमसाए वालों को पता चल जाता है कि भाई यहाँ कुछ हो रहा है, बाद में प्रॉब्लम खड़ी होती है, बंदे पीछे पीछे आ जाते हैं। लेकिन अगर कोई घर पे आ जाए और मुझसे कहे मैं मुसीबत में पड़ा हूँ मेरी मदद करो, धक्के देके बात करूंगे, कर सकता हूं। ज्यादा से ज्यादा उससे कहूंगा भाई ये नंबर ले लो, अल्लाह का वास्ता आइंदा से इस नंबर को कांटेक्ट करो, ज्यादा से ज्यादा यही करूंगा। ये ज्यादा से ज्यादा अच्छा, खुदा ने दरवाजे पे आने मना किया था? मना नहीं किया, उसने कहा मेरे दरवाजे पे आओ, आओ। अब मैं आ गया तो मुझसे कहना जाओ, कैसे हो सकता है? मैं नहीं करता, गुनाहगार इंसान खुदा करेगा? सवाल ही नहीं है कोई, सिर्फ एक काम होगा। अगर मैं वाकई खुदा के दरवाजे पर पहुंच गया, उसे सिर्फ एक काम कहना है, लब्बैक मेरा बंदा है बस। और जितना भी गुनाहगार हो उसको इसकी कह परवाही नहीं है, आ गया काफी। अजीब अजीब रिवायात है मेरे पास, बस आप इस आदत को इख्तियार कर लीजिए, किसी तरीके से आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होगा। इतने ज्यादा आपकी स्ट्रेस, इतनी आपकी फीलिंग फ्रस्ट्रेशन, ये वो ये सब सॉल्व हो रही होंगी अगर आप ये काम करने के चले गए। एक वाक्य मैं इस टॉपिक को खत्म करता हूँ, खुदा की मोहब्बतों को एहसास करें। मैं जुमला भी आपसे बार बार कहूंगा, खुदा की मोहब्बतों को एहसास करें। हमने खुदा की मोहब्बतों को नहीं समझा और खुदा के निज़ाम की मोहब्बतों को नहीं, हमने यकीन माने अपने वक्त के इमाम की मोहब्बतों को नहीं समझा। हमारे वक्त के इमाम हमसे कितना चाहते हैं ये हमने नहीं समझा। हम समझते हैं हम सिर्फ दुआ कर रहे हैं इमाम को कि इमाम आप तशरीफ ले आए, वो हमारी दुआ नहीं कर रहे। अगर वो दुआ ना कर रहे होते तो हम लोग खत्म हो चुके होते, हम लोग मिट चुके होते, उनकी दुआओं से जिंदा है। अल्लाह की मोहब्बतों को एहसास करें। रिवायात में इस तरह से बयान करते हैं, कहते हैं कयामत के दिन में नामे आमाल सबके जाए जा रहे होंगे। एक बंदा था उसने अजीब गरीब हरकत की, उसने कई साल अल्लाह की बंदगी की, नहीं मालूम 70 साल 100 साल कितने साल अल्लाह की बंदगी की। उसके बाद अपने जमाने के नबी के पास गया, कई 100 साल तक अपने जमाने के नबी के पास गया, अपने नबी से पूछा है नबी मेरी उम्र कितनी बाकी है? उन्होंने कहा ये सवाल बताने का नहीं, क्या उन्होंने इसरार किया नहीं मुझे बताएं मेरी उम्र कितनी बाकी। मसलन फर्ज करें इसने 500 साल इबादत की थी, पहले जमाने में लोगों की उम्र बहुत लंबी होती थी। मैंने बताया कुरान करीम में लिखा है हजरत नूह ने तूफान से पहले 950 साल जिंदगी गुजारी, तो ये कोई मिथ नहीं है, वजह से कोई लोगों ने फैलाया नहीं है, वाकई उम्र बड़ी होती थी। तो उसने कई 100 साल अल्लाह की बंदगी की, अल्लाह के नबी के पास गया, कहने मेरी उम्र कितनी बाकी है? उन्होंने कहा नहीं बताने का है, इसरार किया, उन्होंने बताया 200 साल बाकी है। तो इसके दिमाग में शैतान ने एक वसवसा डाला, देखो 500 साल तो वैसी इबादत कर ली है ना, 200 साल बाकी हैं, 150 साल पूरा कर, 50 साल रह गए, फिर भी 550 में 150 हो गए, 550 सवाब के 150 गुना, तब भी बुरा नहीं है ना, तब भी ग्रेड ऊपर है। इसलिए ठीक है 150 साल गुना कर लेते, कोई मसला नहीं। गुना करना शुरू किए, अभी हफ्ते भर गुना किया था, अचानक इसके दिल में ख्याल आया कहने लगा मैं कितना पागल हूं, शैतान के दामन में फंस गया, अल्लाह मेरा मेरा माबूद है, वो मेरा खालिक है, 150 साल में उसके खालिक की नाफरमानी करो, ये क्या दिमाग मेरा खराब हुआ था कि मैंने ये काम करना शुरू किया। अभी सोच रहा था अल्लाह की कज़ा आई, क्या इसको उठा मर गया रिवायत बयान करती है, रिवायतें बाद में सिंबॉलिक टर्म्स में रियलिटी को बयान कर रही होती है। सिंबॉलिक टर्म्स में बयान किया, फरिश्ते अल्लाह के सामने आए, उन्होंने कहा अल्लाह इस बंदे की क्या करना है, जन्नत में जाएगा जहन्नम में जाएगा, 500 साल तेरी बंदगी की है, एक हफ्ते गुनाह किया सारे खराब कर दिया इसने, क्यों? अल्लाह अमाल को उस वक्त कबूल करता है जब नाफरमानी के साथ ना हो, अगर जानबूझ के नाफरमानी कर रहा हो तो कबूल नहीं करता। कुरान करीम में फरमा इन्नमा यतक़ब्बलु अल्लाह मिनल मुत्तकीन, अल्लाह साहिबान तक़वा से कबूल करता है, नाफरमानी से थोड़ी कबूल करता है, यानी कि खुदा इसके साथ क्या करे। सिंबॉलिक एक्सप्रेशन, अल्लाह ने कहा इसके 500 साल के अमाल को एक तरफ रखो और एक हफ्ते जो गुनाह किए हैं वो दूसरे पलटे में रखो, बैलेंस बैलेंस की दो तरफ में, एक तरफ 500 साल रखो, एक तरफ एक हफ्ते की गुनाह रखो, देखो कौन सा भारी है। फरिश्तों ने कहा खुदा वो एक हफ्ते गुनाह भारी है, क्यों? कहा वो जानबूझ के किया, जानबूझ के किया, गलती से करता है तो वो मसला नहीं था, दिल्ली एक हफ्ते के गुनाह भारी है क्योंकि जानबूझ के किए हैं। क्या खुदा जहन्नम में डाल दें इसे? फिर अल्लाह ने कहा एक और काम करो, वो जो एक मिनट के लिए परेशान हुआ था कि मैंने नाफरमानी क्यों की, उसका वजन देखो। जब फरिश्तों ने उसका वजन देखा तो देखा वो डेढ़ एक हफ्ते के गुनाह और 500 साल की इबादत से ज्यादा भारी है। खुदा क्या चाहता है? सोच समझ के मेरी तरफ आओ, बंदगी को अगर एक मिनट के लिए सही सोच लेता है, हमारे पास रिवायत मौजूद है, एक सेकंड के लिए सही सोचना 70 साल की इबादत से बेहतर है। एक सेकंड के लिए सही सोच ले इंसान। अब आप क्या करें? रोजाना 2 मिनट सही सोच ले, सजदे में जाओ। मशवरे के तौर पर क्या है, अगर आपके आंखों में आंसू आ सके तो बहुत अच्छा है। आंखों में आंसू होना दुआ की कबूलियत की निशानी है, तो थोड़ा कबूल कर आप सजदे में जाए, अल्लाह से सलाम करें, कोशिश करें अपने गुनाहों को याद करने से बात करें, खुदा से अपने ताल्लुक को अच्छा करें, उसके साथ जो आपने कहना है कहिए, अल्लाह की बंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करें। अगर आपने ये करना शुरू कर दिया, मैं इस दीन का तालिब इल्म होने के नाते आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो गया, आप एक और दुनिया में पहुँच सकेंगे, वहाँ आपके अंदर डेवलपमेंट बहुत तेज होगी, जो कुछ आप नॉर्मल लाइफ में महीनों में हासिल करते वो एक दिन में आपको नसीब होना शुरू हो जाएगा अगर इस काम को करना शुरू करते। और हमेशा खुदा की मोहब्बतों से उम्मीदवार रहे, खुदा आपको दूर नहीं करना चाहते। एक रिवायत में लिखा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा से नाराज, ऐ मूसा तुमने मेरे लिए क्या किया? हज़रत मूसा ने कहा खुदा सब कुछ तेरे लिए किया, इतनी इबादतें की हैं, इतनी कुर्बानियाँ भी दी हैं, खुदा उनका नहीं मुझसे तुमने अपने लिए किया, तुम्हें जन्नत में जाना था, तुम्हें ये कमाल चाहिए था, तुमने इसलिए सब कुछ किया। हज़रत मूसा ने कहा खुदा तू बता है तेरे लिए क्या होगा? अल्लाह ने अजीब जुमला कहा, ऐ मूसा जो मेरे बंदे मुझसे खफा हुए हुए उन्हें मेरे पास वापस आ, ये मुझे पसंद है, ये अल्लाह को पसंद है, आप उसको अपना टर्निंग पॉइंट बना लीजिए। और जब आप सजदे में जाए, आपको कुछ समझ में ना आए कि मैं खुदा से क्या कहूँ, मैं खुदा गुनाहगार आदमी हूँ, मैं आया हूँ वापस, मैं फिर एक पॉइंट आपकी खिदमत में अर्ज करूँगा, खुदा से कहिए खुदा अगर तू मुझे नहीं चाहता था तो मुझे इमाम हुसैन की मोहब्बत क्यों दी? तूने मुझे इमाम हुसैन की मोहब्बत दी ना, बचपन से मैं इमाम हुसैन का नाम ले रहा हूँ, अगर मैं तेरा दुश्मन था और तू मुझे दुश्मन समझता था तो मुझे इमाम हुसैन के आंसू क्यों दिए? फिर जो तूने अहले बैत की मोहब्बत दी है मुझे, ये इस बात की निशानी है कि तू मुझे अपना बदला समझता था। खुदा से इसी बुनियाद पे तलब करो, खुदा मैंने हमेशा इमाम हुसैन का नाम लिया है, हमेशा तेरे अहले बैत का नाम लिया है, इन ناموں میں لیتے لیتے کبھی خدا کو واسطہ دے دیں بی سید السلام مبارک. اس نام میں عجیب برکت ہے. میں بہت نوٹ کرتا ہوں اور معصومین کے فضائل بیان کرو تو لوگ بہت خوش ہوتے ہیں, بی بی کے فضائل بیان کرو تو لوگوں کی ریا آتا ہے. نہیں معلوم بی بی کی ذات میں کیا حقیقت, بی بی کے فضائل بیان کرو تو ریا آتا ہے. شب جمعہ ہے, میرے پاس روایت موجود ہے, تمام معصومین شب جمعہ میں کربلا میں جمع ہوتے ہیں سید الشہداء کے پاس. نہیں معلوم ان کی حقیقتیں کیا ہیں, کیسے جمع ہوتے ہیں, پھر کیا ہو رہا ہوتا ہے. کیونکہ شب جمعہ ہے اور سید الشہداء کے پاس سب جمع ہیں. میں اس موقع کا ذکر کروں جو سید الشہداء کے لیے بہت سخت گزرا تھا. سید الشہداء کے مسائل میں وہ وقت سید الشہداء کے لیے بہت سخت گزرے ہیں, ان کو لوگوں نے جمع کرنے کی کوشش کی ہے. ہمیں نہیں معلوم سید الشہداء پہ کیا گزر رہی تھی, ہم جان بھی نہیں سکیں گے, طاقت نہیں ہے ہم لوگوں کی, لیکن ہم کچھ چیزوں سے نشانی لیتے ہیں. اس کا مطلب ہے بہت سخت وقت. سخت وقتوں میں سے ایک وقت وہ تھا جب حضرت علی اکبر الوداع کرنے تھے. سخت وقت, اس سخت وقت کی نشانی کیا ہے؟ مجھے حقیقت یہ مسائل اس طرح سے نہیں پڑھ پاؤں گا میں آپ کی خدمت میں, لیکن میں صرف اپنے دل کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے چند جملہ عرض کروں گا. اس سخت وقت کو کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سخت وقت تھا سید الشہداء کے لیے؟ جب بھی کوئی اجازت مانگنے آتا تھا اس سے کہتے تھے تم نہ جاؤ کوئی اور جائے گا. جب علی اکبر اجازت دینے کے لیے آئے تو فرمایا تفضل بنا دے, میرا بیٹا جائے گا, میرا بیٹا جائے گا. نہیں معلوم کوئی انسان اپنے لخت جگر کو اپنے جوان اولاد کو کٹنے کے لیے بھیج رہا ہو اس کے دل میں کیا گزرتی ہو. سید الشہداء اپنے بیٹے کو بھیج رہے تھے. اب جو کچھ مخدرات کے خیموں کے اندر ہوا تھا اس کا میں کیا عرض کروں, لیکن تبرکن اللہ جہاں اندر جوادی صاحب ایک جملہ پڑھا کرتے تھے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. کہنے لگے علی اکبر جب خیمے سے باہر آئے تو ایسے باہر آئے جیسے جوان کا لاشا گھر سے نکلا ہے. اتنا بھی کیا کلیا کر رہے تھے. اس کے بعد ایک روایت پڑھی انہوں نے, کہنے لگے جب حضرت علی اکبر خیمے سے باہر آئے تو حضرت روایت کسی نے علی اکبر کا ابا کا دامن تھاما, ابا کا دامن پکڑ کے گھسیٹا. تو انہوں نے کہا اگر کوئی عورت پوری خاتون ہوتی ہے تو شانہ پکڑتی ہے کہ کسی بچی نے پکڑا ہوگا. ابا کا دامن تھاما ہے, نہیں معلوم بی بی سکینہ ہوں گی, نہیں معلوم بی بی رقیہ ہوں گی, کون ہوں گی. علی اکبر الوداع کرنے کی جیسی تو شہداء کے سامنے آئے, میں نے عرض کیا سید الشہداء کے اوپر غم کا عجیب وقت تھا, ہمارے پاس کچھ نشانیاں اس کی موجود ہیں. سید الشہداء کو دشمن کے لیے ایک بیان کرنا اور اس سے پڑھ کر کچھ بات اور ہے ہمارے پاس روایت کے اندر. ہمارے پاس روایت میں لکھا ہے کہ سید الشہداء نے علی اکبر سے کہا کہ بیٹا دشمن تک پہنچنے سے پہلے مڑ کے مجھے پیچھے دیکھتے رہنا, مڑ کے مجھے دیکھتے رہنا. زمین پر ریتے ہوئے, زمین پر ہم نے आपको घसीटते हुए पहुंचे सामने नहीं मारूं। अरे जो मैं ऐसा कर रहा हूं जिसके बारे में मेरा जैसा आदमी कहेगा भाई इसके लिए कह सकते हैं सही तो शोहरा ने कहा है ये जुमला मुस्तरद जुमला है मुकादर की किताबों के अंदर लिखा हुआ है बातों का हमारे पास अरबी में कोई जुमला लिखा होता है उसके बारे में हम लोग कंफर्म हो जाते हैं कि ये सही तो शोहरा ने कहा होगा। अब जो जुमला कह रहा हूँ कि सही तो शोहरा ने कहा होगा इसके बारे में तकरीबन यकीन से कह सकते हैं। जब हजरत अली अकबर की लाश के ऊपर पहुंचे तो ये जुमला फरमाया फरमाया वो आलम दुनिया वाले खिलाफा अकबर तेरे बाद दुनिया में कुछ सही रहा सही तो शोहरा ने दिल के काम को दे दो फरमाने अली अकबर तेरे बाद दुनिया में कुछ सही सही तो शोहरा बसीर है सही तो शोहरा शहूर है सब की आला